प्रस्तुति। एक कदम रोशनी की ओर। कैंसर योद्धाओं से बातचीत की श्रृंखला।
एक कदम रोशनी की ओर। रोशनी फैलाने वाली समाज में वो महिलाएं जो कैंसर को हरा चुकी हैं हमारे साथ आती हैं इस कार्यक्रम में। बिलासपुर की रहने वाली निर्मला बंछोर आज अर्पा रेडियो के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। ये भी इस युद्ध को जीतकर हमारे साथ समाज के बीच एक खुशनुमा जीवन बिता रही हैं। नमस्कार निर्मला जी।
धन्यवाद दीदी, नमस्कार।
निर्मला जी गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी की व्याख्याता हैं और वर्तमान में नूतन चौक सरकंडा की कन्या शाला में पढ़ा रही हैं। चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। निर्मला जी बताइए, आप अच्छा खासा जीवन जी रही थी, अचानक एक दिन आपको झटके से पता चला होगा कि आपके अंदर कैंसर के सेल्स मौजूद हैं। कब पता चला, उसके बाद आपको कैसा लगा, आपके परिवार में क्या स्थितियाँ बनी, हम उसके बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे।
सन 2012 की बात है, जो अक्टूबर का महीना था, मेरा जन्मदिन भी रहता है उस मंथ में, तो अचानक मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, तो मैं उसको सामान्य मान ली थी और अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनको दिखाई। फिर मुझे लूज मोशन होने लगा और लूज मोशन के साथ में थोड़ा ब्लड आने लगा, तो हमारे फैमिली डॉक्टर सोचे कि जो म्यूकस आँव बोलते हैं उस तरह का प्रॉब्लम होगा, इस तरह से वो मुझे दवाई दिए। इस दवाई को देने के बाद भी एक सप्ताह में मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप अपोलो जाइए और अपोलो जा करके थोड़ा सा मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो चेकअप कराइए। तो मैं अपोलो गई और अपोलो में डॉक्टर देवेंद्र सिंह से मिली, तो उन्होंने मेरा कोलोनोस्कोपी किए। जब कोलोनोस्कोपी किए तो उन्होंने बताया कि आपके रेक्टम में कैंसर है और उन्होंने बायोप्सी के लिए भेजा। उन्होंने तो तुरंत बता ही दिया था मतलब कि है इसमें, ऐसा तरह की बात मैं सुनी कि कैंसर है, तो चूंकि मैं उस समय तो एकदम स्तब्ध हो गई थी कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मैं पूर्णतः अपना हर काम अच्छे से करती थी, कभी ऐसा नहीं लगता था कि मुझे कुछ समस्या होगी। मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना, रामदेव को फॉलो करना, पूरा सब करती थी। एक मन में था कि इस तरह की प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, मतलब सुन करके। उस समय मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, बच्चे मेरे दोनों बाहर थे, तो हम दोनों घर आ गए, दोपहर की बात है। फिर हम दोनों परेशान भी हुए, फिर मुझे लगा कि नहीं, कैंसर से परेशान नहीं होना चाहिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपको समय देता है, वायरस बैक्टीरिया आपको समय नहीं देता है, जिसमें आपको सोचने का प्लानिंग करने का भी टाइम नहीं रहता है, लेकिन कैंसर में आप इतना जल्दी तो नहीं मरोगे, इतना तो निश्चित होता ही है। तो मैं मिस्टर को भी बोली, मिस्टर मेरे काफ़ी परेशान हुए कि कैसे करेंगे क्या करेंगे करके। फिर हम लोग फिर अपनी फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किए, डॉक्टर क्षेत्रपाल सरकंडा में है, उन्होंने कहा कि मैडम आपकी फैमिली पूरा रायपुर में है, मैं रायपुर दुर्ग की रहने वाली हूँ, तो आप वहाँ चले जाइए इस तरह से। तो डॉक्टर देवेंद्र सिंह भी बोले कि आपको जैसा उचित लगता है आप वैसा करिए करके। फिर मैं रायपुर चली गई, मेरी बड़ी वाली सिस्टर वहाँ रहती है उनके पास, और वहाँ पर मैं फिर आरोग्य हॉस्पिटल है वहाँ मैं अपना चेकअप कराई फिर से, तो डॉक्टर ने फिर डायग्नोज करके बोले कि कैंसर है और 6 सेंटीमीटर लंबा ट्यूमर था। ये पता ही नहीं चला मुझे कि कभी कि मेरे पेट में इस तरह का रेक्टम में इतना बड़ा ट्यूमर है। जब उन्होंने ट्यूमर निकाला और देखे तो विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा ट्यूमर के साथ मैं कब से जी रही थी, मुझे विश्वास भी नहीं हुआ। फिर भी मैं जब मैं गई और मेरे डॉक्टर रमेश परिमी सर ऑपरेट करने के लिए आए, तो उन्होंने मेरा पूरा हिस्ट्री पूछे, मेरे परिवार में कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। फिर मैं बोली सर मैं एक टीचर हूँ, मुझे जल्दी ठीक होना है, तो बोले 15 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, मैं बोली सर मेरे बच्चों का एग्ज़ाम का टाइम है अभी जनवरी मतलब नवंबर के बाद, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी ठीक करिए। तो बोले हाँ आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मैं जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद पहले तो बोले कीमो की भी ज़रूरत नहीं है, फिर बोले नहीं अगर एक आध सेल बच गया होगा तो आप एक कीमो ले लीजिए। फिर कीमो शुरू हुआ। कीमो जैसे ही शुरू हुआ मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। कीमो लेते लेते मैं बच्चों को पढ़ाते रही हूँ, और मेरी स्टाफ इसमें मेरे प्रिंसिपल मैं बनर्जी मैम, अर्चना बनर्जी मैम को बहुत थैंक्स कहूँगी, मेरे स्कूल स्टाफ को, क्योंकि उन्होंने मतलब मुझे कहा कि आप जो क्लास लेना चाहती हैं केवल वही लीजिए, उसके बाद जा कर के रेस्ट करिए, और मैं रेस्ट करती थी। इवन तक के कुछ बच्चे ऐसे थे, जब मैं कीमो मेरा ज़्यादा होने लगा तो थोड़ी सी इम्यून पावर थोड़ा डाउन होता है तो वीकनेस आती है, तो मैं छुट्टी ले ली। तो बच्चे बोले मैडम हमारी लास्ट पीक पॉइंट है और हमारी टीचर नहीं है, अपने घर में बुलाई। और मैं बिस्तर में लेटे रहती थी और बिस्तर के चारों ओर मेरे बच्चे बैठते थे और उनको मैं अपना ग्रामर पढ़ाई, और वो बच्चे उस साल टॉप किए थे।
अरे वाह।
तो इन बच्चों को देख करके मुझे लगा कि अब बच्चे मेरे लिए प्रार्थना करते थे, मंदिर जाते थे, मेरी स्टाफ वाले मेरे लिए पूजा करते थे, मेरे लिए प्रसाद लेकर के आते थे। तो फिर मुझे लगा कि अरे ये क्या है, बीमारियां तो आते जाते रहती हैं, यही तो जीने का अब तरीका। अब तो हमें समझ में आया कि लोग हमसे कितना प्यार करते हैं।
ये बात तो सही बात है।
तो फिर इनके साथ तो
मतलब आपने आपने लोगों को का प्यार देखने के लिए इतनी बड़ी बीमारी मोल ले ली।
वो बीमारी जो छुपर उत्तम था, छुपर उत्तम है वो, तो वो कहाँ से निकल आया। अगर हम शायद इसको इग्नोर करते तो और कुछ दिन भी छुपा रहता, लेकिन सोचे कि चलो चेकअप करा ही लेना चाहिए। और मैं अब लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि कभी भी कुछ भी जरा सा भी लगता है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत चेकअप कराना चाहिए।
क्योंकि जितने भी कैंसर से पीड़ित लोगों से हमने बात की है, सबके सिम्टम्स अलग अलग तरह के हैं। तो कोई भी सिम्टम हो सकता है, हल्की सी खांसी भी हो सकती है, सिंपल सा पेट में दर्द भी हो सकता है जो आगे इस बीमारी का रूप ले ले, या वो आपको सिग्नल बताने के लिए वो उतनी सी चीज भी जो है आप नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर के पास फौरन जाए
और एक्सपर्ट के पास जाए हमेशा। कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग क्या करते हैं, सामान्य दवाइयां ले लेते हैं, तो जैसे ही लग रहा है, कई बार डॉक्टर भी एडवाइस नहीं करते हैं कि आप इनके पास जाइए, वो भी मेडिसिन देते रहते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो उसके विशेषज्ञ से मिले आप
जी।
कभी भी जैसे पेट का प्रॉब्लम मुझे लगा तो तुरंत मुझे विशेषज्ञ से ही मिलना, मैं देवेंद्र सिंह से मिली, फिर वहाँ भी मैं गेस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत गुप्ता से मिली रायपुर में, और उन्हीं के अंडर में मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ, और आज मैं बहुत अच्छे से अपना पूरा काम फिर से कर पाती हूँ। मैं 2012 के बाद 2018 तक, यहाँ तक कि बच्चों को मैं इको क्लब से भी जुड़ी हुई थी, तो बच्चों को लेकर के बाहर इको क्लब में गई हूँ, अमरकंटक वगैरह भी लेकर के गई हूँ, अंबिकापुर लेकर के गई हूँ, इस तरह से बच्चों के साथ मैं ट्रेवल करती थी।
क्या आपको बीमारी के पहले आप जितनी अपने आप को एनर्जेटिक और स्वस्थ महसूस करती थी, अब वापस वो उस रूप में आ चुकी हैं?
नहीं, थोड़ा तो आता है, साथ साथ उम्र का भी है। अगर आप कहें अभी मेरा उम्र क्या है, तो क्या वो सोचेंगे आप?
क्या
मैं 60 रनिंग में हूँ?
अच्छा।
तो
सही बात है भाई, हम भी उम्र होने के बाद जो कमजोरियां आती हैं, हम स्वस्थ लोग भी वो चीज महसूस कर सकते हैं।
एक बार फिर मेरा 2018 में क्या हुआ, इसका कीमो रेडिएशन का जनरली बताते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट होने से आते क्या हो जाती है, चिपक जाती है।
अच्छा।
तो मेरे साथ भी वही हुआ, 2018 में मेरी आते चिपकने लग गई, जिसके कारण मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम, खाने पीने में प्रॉब्लम होने लग गया, तो फिर मुझे एक बार फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ा है।
अच्छा।
हाँ, मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ है।
तो दूसरी बार आपका कैंसर के कारण नहीं,
नहीं
था,
कैंसर
वो तो
के कारण नहीं है, आते जो है चिपक गई है, सिकुड़ गई थी, कीमो रेडिएशन के साइड इफेक्ट।
अच्छा।
हाँ, उसके कारण, तो उसके चलते डाइजेशन का प्रॉब्लम तो आता ही है, साथ ही साथ हमको अपनी लाइफ स्टाइल और खाने पीने पर पेट वालों को स्पेशली ध्यान देना पड़ता है।
और बाकी लोगों जो किसी भी जगह का कैंसर है अगर किसी के, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
मैं तो ये कहूंगी, सबसे पहले तो आप कैंसर से डरिए मत। एक तरह से हम इसे बीमारी नहीं कहेंगे, ये बीमारी नहीं होती है। अगर हम डायग्नोज करें तो हर इंसान के शरीर में कहीं ना कहीं टिश्यू, साइंस की भी टीचर हूँ प्लस, तो हम लोग जानते हैं कि कोशिकाएं कहीं ना कहीं पर वो बढ़ने लग जाती हैं, तो यही जब थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आ जाता है कहना कहना चाहिए, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाले। आप उसको अपने लाइफ स्टाइल से, अपने इम्यून पावर से, अपने खान पान को बदल करके आप उसको हटा भी सकते हैं।
जी
हाँ, ये भी है, मेडिसिन तो है ही, इसके मेडिसिन के साथ साथ आप अपनी दिनचर्या, क्योंकि आज का मिलावट का जमाना है, खाने पीने में जो भी हम खा रहे हैं केमिकल खा रहे हैं, डॉक्टर भी स्पष्ट नहीं बता पाते हैं कि ये कैंसर क्यों हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि वो स्पष्ट। कोई भी महिला ना तो स्मोकिंग करती है, ना ड्रग्स लेती है, ना ड्रिंक लेती है, उनको भी कैंसर हो रहा है।
लिवर
हाँ,
कैंसर हो रहा
लीवर
है।
कैंसर हो रहा है, इंटेस्टाइन कैंसर हो रहा है, तो आज तक डॉक्टर भी इस चीज से परे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि, तो वही है, कोशिकाओं में परिवर्तन होते रहता है और कोशिकाएं ही आपस में कोई कारण से आपस में चिपक जाती हैं, टिश्यूज बन जाती हैं, जो कहना चाहिए एब नॉर्मल टिश्यूज में
बिल्कुल
बदल जाते हैं, तो इसके कारण ही ये कैंसर कहलाता है और बहुत ज्यादा ये बढ़ते जा रहा है। इसके लिए मैं तो अपनी ये सब अपने जिंदा दिल और अपने पूरी अनीता दीदी और आराधना दीदी को देख करके मैं सोचती हूँ कि जब इन लोग इतना जिंदा दिली से जीते हैं तो मैं तो क्यों नहीं जी सकती हूँ, मैं भी जी
नहीं, आप
सकती
भी एक माध्यम बनी हुई हैं सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए समाज के बीच में, अपने स्टूडेंट्स के बीच में, अपने चाहने वालों के बीच में। अच्छा, इस दौरान आपने अपने हस्बैंड का तो बताया, लेकिन आपके बच्चे उस समय बाहर पढ़ने गए हुए थे, और इस दौर के समय वो लोग, जब कठिन दौर आपका था, उस समय वो लोग कितना साथ में थे, और कितना उन लोगों के साथ कैसी बीती गुजरी?
मैं तो अपने मिस्टर मतलब मेरे हस्बैंड के लिए कहूंगी कि कहते ना कि भगवान किसी ना किसी को कोई ना रूप में भेजता है, तो मेरे हस्बैंड जो है मेरी इस तरह से सेवा की है जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची पैदा हुई हूँ और मुझे कैसे बड़ा करना है, संभालना है। इवन चूंकि मेरा पेट का प्रॉब्लम था तो पेट के प्रॉब्लम के कारण मुझे लूज मोशन की समस्या बहुत होती थी, तो मेरे मिस्टर रात के भी 2 बजे उठ करके गर्म पानी करना है तो गर्म पानी करके मुझे देते थे, और बिल्कुल मतलब एकदम बिस्तर से उठने नहीं देते थे कि तुम यहीं पर रहो, मतलब पूरा सेवा किए हैं। बच्चे मेरे बाहर थे, बच्चे ज्यादा समय तो नहीं दे पाए, लेकिन मेरी बेटी, उनका AI EEE का एग्जाम था उस समय, संघर्ष का समय था, बच्ची का करियर का भी सवाल था, बेटा का जॉब लग चुका था, तो बेटा जॉब के चलते नहीं टाइम दे पाया, आया जरूर लेकिन टाइम नहीं दे पाया। बेटी जो है एग्जाम देने के लिए कोटा से आई और मेरा रेडिएशन चल रहा था, और रेडिएशन में ऐसा होता है कि पूरे शरीर की कोशिकाएं गलने लग जाती हैं, इतना तकलीफ होता है, तो मेरे साथ भी ये हो रहा था। तो मेरी बेटी जो है कॉटन में, पूरे गर्मी मई जून के महीने में हो रहा था मेरा रेडिएशन, तो पानी निकलने लगता है स्किन से,
अच्छा
हाँ इतना तकलीफ होता है, इवन तक कि कई बार तो वो ब्लड भी आने लग जाता है। तो मेरी बेटी पूरा मलहम लगाना, कॉटन से पोंछना, पूरे पूरा क्या खिलाना है, क्या टाइम से, इसमें टाइमिंग भोजन का बहुत रहता है कि आप टाइम से डाइट लोगे, टाइम से आपको मेडिसिन लेना है, ये सारी चीजें हैं। तो मेरी बच्ची भी इसमें बहुत सफर की है और इसके साथ उन्होंने, दोनों बच्चों ने मेरा हिम्मत बनाए रखा, और मेरे हस्बैंड भी काफी हिम्मत करके मुझे आज तक यहाँ तक लेकर के आए हैं, और अभी भी कहीं भी आना है जाना है मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े रहते हैं।
परिवार का सहयोग और आपकी विल पावर आज आपको हमारे साथ, हमारे बीच बैठाकर आपसे आपकी कहानी सुन रही है, हमारे श्रोताओं को आप अपनी कहानी सुना रही हैं, और यूं ही आप हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, अपनी सकारात्मक ऊर्जा समाज में प्रवाहित करती रहें, इसी कामना के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
थैंक यू दीदी, हम तो यही कहेंगे जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना, इसलिए आप तो जी लेते
बिल्कुल बिल्कुल,
हैं
आज को तो हम अच्छी तरह
ना
जिए।
जी, और ये तो एक रंगमंच है, शेक्सपियर ने भी यही कहा है, सब हम अपने यहाँ पर अपना जो भी पार्ट है वो अदा करने आए हैं, शायद हमें कैंसर सर्वाइवर बना करके समाज में उन्होंने मैसेज देने के लिए ही ये
चुना है
चुना है। तो
जी जी
तो ये सारी हमारी टीम है और ये टीम हम सब मिल करके समाज को हम चाहेंगे कि एक नई दिशा दे।
बिल्कुल।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कदम रोशनी की ओर।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।